प्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ।
ओम शांति। अभी आप सबने छह ही लंबे समय के लिए आत्मिक शांति अथवा परमात्मिक शक्ति का अनुभव किया। मुझे जो विषय मिला है, मैं मेरे का देह अभिमान कैसे दूर करें, वे तो आपने दूर कर अनुभव कर ही लिया। फिर भी मैं इस विषय पर जो मुझे विचार चले मैं आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि जब प्रातः प्यारे बाबा के महावाक्य सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बाबा इसी विषय पर ही सुना रहे हैं। कह रहे हैं मेरी तो देह नहीं है, लेकिन तुम भी तो ऑर्गन्स के द्वारा ही काम करते हो, मानो तुम भी तो आत्मा हो। ऑर्गन्स केवल मात्र आपके कार्य करने के साधन है। अगर मैं देह नहीं तो तुम भी तो देह से अलग, देह से कार्य कराने ही वाले हो। फिर दूसरी बार कह दिया, बच्चे ये देह अभिमान ही तो महाशत्रु है। और फिर तीसरा कहा, बाप का फरमान है देही अभिमानी बन। आज ही प्रातः बाबा ने इन सब बातों से हमको अवगत कराया, ये फरमान क्या है, शत्रु कौन है और तुम क्या हो। और हम सबको मालूम है कि हम सब रूहानी मिलिट्री हैं, और मिलिट्री में भी कुछ लॉज होते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं। अगर उस मिलिट्री के सैनिक किसी भी लॉ और किसी भी ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं तो यहां तक उन्हें शूट कर दिया जाता है। यहां रूहानी मिलिट्री को भी कुछ लॉस भी मिले हैं, कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं, लेकिन कोई शूट नहीं करता। अगर हम अवज्ञा करते हैं तो स्वयं उस उच्च स्थिति से शूट हो जाते, अर्थात नीचे उतर आते। अब हमें बाबा ने कौन सा लॉ दिया है, ये बाबा के महावाक्यों की बात ही मैं सुना रही हूँ। बाबा ने खास कहा हुआ है, तुम बच्चों को लॉ है, देह सहित देह के सर्व संबंधों से और देह की दुनिया से मन और बुद्धि को हटाकर स्वयं को आत्मा समझना। ये इस विद्यालय में विद्यार्थियों को लॉ है, और ऑर्डर है सर्व संबंध मुझ सर्वशक्तिवान से जोड़ने, ताकि बुद्धि को कहीं सुरांग ना मिल जाए कहीं इधर उधर जाने का। अगर हम ला तोड़ते हैं या ऑर्डर फुली ओबे संपूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करते हैं तो हम जरूर है अपनी स्थिति से नीचे उतर आते हैं, हम उच्चता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने आज फिर हमको रिवाइज करा दिया, ये मेरा फरमान है। पहले राजाओं का जब राज्य होता था, राजा का कोई फरमान होता था तो ढोलक सारे शहर में घुमा दिया जाता था, राजा साहबा का फरमान है, और सारे कान खोलकर सुनते थे कि क्या फरमान आ गया। और हम सब देखें, हमको किसका फरमान सुबह सुबह मिला, ऑलमाइटी अथॉरिटी का फरमान मिला। और अगर हम फरमान को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हमें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। जब हमारी अवस्थाएं ज्ञान में चलते हुए उदास होती हैं, निराश होते हैं, उल्लास और उमंग की कमी प्रतीत होती है, आशा के बदले निराशा मिलती है, ये किस लिए सब कुछ होता है। बाबा के वो बच्चे जिन्होंने बाबा को अपना सर्वस्व जीवन दे दिया, जिन्होंने दुनिया से इंद्रियों के सुखों का त्याग करके उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए प्रभु को अपना बना लिया और उस दाता के बन गए, उनके जीवन में समय प्रति समय अगर कभी निराशा आती है, आशा में कमी हो जाती है, उदासी आती है, जीवन में उमंग और उल्लास की कमी आती है, तो जरूर है किसी लॉ का या ईश्वर के ऑर्डर का हम उल्लंघन करते हैं। वह उल्लंघन हमें किसी न किसी प्रकार से दुखद परिणाम देता अवश्य है, चाहे हम उसको समझें या हम उसको इग्नोर कर दें, ये हमारे ऊपर। क्योंकि बाबा इस समय आया है और खास बाबा का ये कहना है कि बच्चे तुम बाप के किस लिए बने हो, याद करना, अपना परिवर्तन कर औरों को परिवर्तित करने के लिए, भूल न जाना। हम यहां आए किस लिए हैं, हमने प्रभु को अपना जीवन क्यों दिया है। तभी बाबा ने एक महावाक्य में बहुत सुंदर कहा, जब मेरे बच्चे बाबा के घर आते हैं, उमंग में आते हैं, वायदे करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन वापिस जाने पर वो वायदा, वो उमंग, वो प्लान प्रैक्टिकल जब नहीं आता है तो कभी कभी निराशा आ जाती है। और निराशा का परिणाम क्या है, बाबा ने कहा प्रातः जब उठते हो, अमृत वेला आप यज्ञ रचते हो, उस यज्ञ में किसी न किसी कमी कमजोरी की आहुति देते हो, लेकिन जब मधुबन में आते हो तो ये यज्ञ नहीं है, ये रुद्र ज्ञान महायज्ञ है। और इस महायज्ञ में सर्व योगियों के लगन की अगन होती है और उस तेज अगन में जो आहुति दी जाती है वो जल्दी से स्वीकार होती है। लेकिन कई बार बच्चे जब वो आहुति देते हैं तो कमजोर बच्चे को सेक जरा ज्यादा लगता है। कई बार आप देखो जब वो यज्ञ रचा होता है, अग्नि जल रही होती है और उसमें आहुति डालते हैं तो अग्नि तेज है, सेक लगता है, थोड़ा अंदर जाता है बाकी बाहर गिरा होता है, ढेर बार गिरा हुआ होता है। ऐसे बाबा ने कहा यहां भी सर्व के लगन की अगन की महायज्ञ में तुम बच्चे संकल्पों से आहुति डालते हो, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन वह आहुति संपूर्ण आहुति नहीं पड़ पाती। सेक थोड़ा ज्यादा लगता है अर्थात मन में थोड़ी कमजोरी आती है कि कह तो रहे हैं, डाल तो रहे हैं, ये तो पहले भी डाला था, हुआ नहीं, अगर अब फिर डालें और फिर हम जाके अपने बड़ों को या संबंध वालों को बताएं इस बार तो मैंने ये संकल्प कर लिया तो मेरा मजाक हो जाएगा, अरे उस किया तो पहले भी था लेकिन पूर्ण तो किया नहीं, और फिर हम कर लें और पहले भी मैंने किया था पूर्ण नहीं कर पाए, पता नहीं अब भी पूर्ण हो या ना हो, ऐसे ऐसे संकल्प आहुति संपूर्ण नहीं डलने देते। और जब संपूर्ण आहुति नहीं डलती है, आहुति अपूर्ण रह जाती है, तो प्राप्ति पूर्ण कहां से होगी। हम चाहते हैं पूर्ण प्राप्ति हो। अभी देखिए आप हम सब यज्ञ में अब आए हैं, किस लिए आए, जरूर है हम कुछ अपने जीवन में कुछ दिव्य नवीन परिवर्तन लाने के लिए आए, और बाबा ने हम बच्चों को अन्य सेवाओं से निवृत्त कर इस स्थल पर एकत्रित किया, कोई रिफ्रेश करने के लिए, थकावट को दूर करने के लिए नहीं किया, लेकिन सदा काल के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न मेरे बच्चे बन जाएं, इसलिए बाबा ने यहाँ बुलाया। बाबा ने बहुत सुंदर बातें एक महावाक्यों में सुनाई कि बच्चे जब आते हैं और परिवर्तन के संकल्प प्लान बनाते हैं, उमंग उल्लास करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। पहली बात कि सामग्री ही पूरी नहीं दे पाते, उसमें ही संकल्प होते हैं, कह तो रहे कर तो रहे, पहले भी किया हुआ नहीं, अब भी पता नहीं क्या और कैसा होगा, ये थोड़ा सा हाथ कांप जाता है, सामग्री थोड़ी बाहर रह जाती है। और दूसरी बात है, एक बाबा की बहुत सुंदर बात है, क्योंकि किसी के भी परिवर्तन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, परिवर्तन ऐसे नहीं आता है। और मैं देखती हूँ 3-4 फैक्टर्स जो हमें परिवर्तन के प्रोसेस है, सीढ़ियां हैं, ये जरूर क्रॉस करनी पड़ती। मान लीजिए मैं किसी भी चीज को जीवन में अपनाना चाहती, परिवर्तन लाना चाहती, तो सबसे पहले मुझे अपने सामने इस बात को लाना बहुत जरूरी है कि इसको करने से क्या लाभ होगा और ना करने से क्या नुकसान होगा। और बाबा ने हमको कह दिया, संगम का युग है, लाभ होगा तो कल्प कल्प का लाभ होगा, नुकसान होगा तो कल्प कल्प का नुकसान होगा। बच्चे ये बाजी है, जन्म जन्म की बाजी, अच्छी तरह समझ लो, सोच लो, जो भी तेरी प्राप्ति है वो कल्प कल्प की प्राप्ति होगी और जो भी तेरी अप्राप्ति है वो भी कल्प कल्प की अप्राप्ति होगी, वो कोई 1-2 जन्मों की प्राप्ति नहीं। ये समझ सोच कर उस परिवर्तन के संकल्प को दृढ़ करो। और दूसरा फैक्टर ये आता है कि हम रियलाइज कर लें, महसूस करें, सचमुच सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा हमको परिवर्तित होने के लिए कहें, तो जरूर है कि ये परिवर्तन लाना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान नॉलेजफुल है, सत्य है, और सत्य का बोल कभी असत्य नहीं होगा। अगर उस सत्य की आज्ञा के अनुसार मुझे अपने जीवन का परिवर्तन करना है तो अभी करना है, ये परिवर्तन मुझे जन्म जन्म की प्रारब्ध देने वाला है। ये मुझे अपने आप से पूछें, हमको रियलाइज होता है। मैं देखती हूँ बहुत सी बातें हम सुनते जरूर हैं, लेकिन अच्छाई भी मालूम है, बुराई भी मालूम है, लेकिन रियलाइज नहीं होता है। नॉलेज जरूर है, रियलाइज का मतलब क्या? जिस समय मुझे परिपूर्ण रूपेण इस बात का निश्चय हो जाए, सचमुच ये करने से क्या हो जाएगा, ना करने से कितना नुकसान है, उस समय कितनी अलर्टनेस, कितनी सावधानी आ जाएगी। परिवर्तन ऐसे नहीं आता है। और तीसरा, रिजॉल्व, किसी भी परिवर्तन के लिए दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। मुझे इस परिवर्तन को परिवर्तित करके ही छोड़ना है, बिना इसके मैं नहीं चल सकता, ये परिवर्तन होना ही है। बाबा ने कई शब्दों में कहा है, दृढ़ता वो माचिस की तीली है जो तुम्हारी कमजोरियों को भस्म कर देने वाली है। ये दृढ़ता का बहुत संकल्प, पावरफुल संकल्प होना चाहिए। और दृढ़ता के पश्चात एक और फैक्टर है कि अब इस मार्ग पर जब चले हैं, अपने जीवन के इस परिवर्तन का संकल्प जब ले लिया, अच्छाई और बुराई, लाभ और नुकसान पता चल गया, रियलाइज हो गया, दृढ़ संकल्प कर लिया, अब इसके सामने कई विघ्न आएंगे, कई बाधाएं आएंगी, कई रुकावटें आएंगी, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। रुकावट और बाधा को बहाना बना करके हम अपने पुरुषार्थ को छोड़ दें, ये कायरता है, ये दृढ़ता नहीं, ये संकल्प नहीं होता है। दुनियावी एग्जाम्पल हमारे पास है, देश तो गुलाम कब से चल रहा था, लेकिन गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में गए उस समय उन्हें एहसास अपनी स्वतंत्रता का किस समय हुआ, जब उनका टिकट लेने के बावजूद भी टिकट चेक करने वाले चेकर ने सामान सहित उनको डिब्बे से उतारकर बाहर कर दिया और ये कहा कि तुम्हें इस गाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं है। कई होटलों पर लिखा उस समय मिलता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इतना सब देखते हुए भी विचार नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि टिकट मेरे पास है और गुलामी है इस देश की, ये गुलामी कि मुझे टिकट के बावजूद भी स्टेशन पर डिब्बे से उतारकर प्लेटफॉर्म में बिठा दिया, उस समय उनको ये दृढ़ता आ गई, अब मुझे लाठियों का मुकाबला करना पड़े या गोलियों का मुकाबला करना पड़े, अब इस देश को स्वतंत्र करा के ही रहना है। ये एक इंसान की आवाज थी और अनेकों के हृदय को उस आवाज ने पकड़ लिया, अनेकों को परिवर्तित होने का, गुलामी से छूटने का संकल्प आ गया। आप सोचिए कितनों ने अपने जीवन को कितने प्रकार के दुखों से, कष्टों से निकाला, कितने प्रकार का सहन करना पड़ा, ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिल गई। अगर हम ये समझे मैंने संकल्प तो किया है, अब मुझे कोई ऐसा ना करे, ऐसा ना कहे, ऐसा ना हो तो मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, कोई कहेगा कोई करेगा, निंदा होगी ग्लानी होगी, आगे से ज्यादा काम मिलेगा, आगे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बावजूद भी मेहमा किसी और को मिलेगी, माला किसी और को डलेगी और माला डालने के निमित्त मुझे बना दिया जाएगा, तुम इसको माला डालो, ये भी होगा, कुछ भी हो जाए मुझे बदल कर ही दिखाना है, परिवर्तित होकर ही दिखाना है। जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प किसी चीज का होता है और उसके लिए हमें फेस करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हम तैयार होते हैं, आप सोचिए उस समय जो हिम्मत अंदर आती है, वो हिम्मत होती जरूर है लेकिन दबी हुई होती है, वो जागृत हो जाती है। बाबा ने भी बड़ा सुंदर सुनाया कि जब यज्ञ रचा होता है और यज्ञ रचने के बाद आहुति दे देते हैं, आहुति देने के बाद जब वापिस जाते हैं तो वो जो आहुति दी है वह आहुति का परिणाम सामने नहीं आता, कारण क्या है? ज्ञान सुनते हैं कम रस तक रहता है लेकिन जीवन में वो रस नहीं बनता। जिसको बाबा ने कहा भोजन खा लिया, लेकिन अगर भोजन खाने के बाद पचता नहीं है और रस नहीं बनाता है तो शक्ति नहीं आती है। ठीक, कई बच्चे ज्ञान का भोजन खाते जरूर हैं लेकिन वो भोजन रस नहीं पैदा कर पा रहा क्योंकि पाचन शक्ति नहीं हो पा रही है। जिसका बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि मालिक अपनी गाय को जब देखता है चुपचाप बैठी है और कोई जुगाली मुख से मुख ऐसे घुमा नहीं रही है तो समझ जाता है मेरी गाय बीमार है, क्योंकि गाय घास करने के बाद जुगाली करती, और अगर जुगाली नहीं करती समझो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान सुनने के बाद कभी उस पर मनन चिंतन ही नहीं करते हैं, जुगाली नहीं करते हैं। मैं भी समझता हूँ मेरे बच्चे बीमार हैं, क्योंकि तुम ही तो चेतन गैया हो जिनको ज्ञान घास मिल रहा है, और जब वो जुगाली नहीं तो शक्ति कहाँ से आएगी, और जब शक्ति नहीं होती है तो जो आपने यज्ञ में थोड़ा बहुत डाला वो डाले हुए का इफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि सफलता तब मिलेगी जब सब कुछ सफल किया जाएगा, सफल ही पूरा नहीं किया, सफलता के समय ही थोड़े हाथ कांप गए तो आपको प्राप्ति कैसे होगी। बाबा ने बहुत सुंदर कहा, संकल्प करते हो, प्लान बनाते हो, उमंग आता है, लेकिन बच्चे बीज बोने के बाद अगर बीज को जल ही ना मिले, उसका अटेंशन ही ना रखा जाए तो बीज फलीभूत नहीं होता है। ऐसे बहुत से बच्चे संकल्प का बीज बोते हैं लेकिन उनको स्मृति का जल नहीं देते, प्रतिदिन स्मृति में नहीं लाते कि मैंने ये संकल्प किया है, मुझे पूरा करना है, मुझे प्रतिशत प्रतिशत इसमें सफलता पानी ही है, पानी है पाएंगे। ये बाबा ने बोल बोले कब तक पानी है और कब तक पाएंगे। बच्चे तुम बच्चे नहीं करोगे। और सचमुच हम जिन्होंने अपने जीवन को प्यारे बाबा की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया, अगर वो नहीं पाएंगे तो कौन पाए। अब सोचो तो सही कि हम थे क्या। कहते हैं हीरा है या कोयला है, दोनों ही कार्बन की नस्ल है। कैसे कोयले से हीरा बन जाता है। और कहा गया है कि अगर कोयलों को इतनी आग मिले, जहां कोयले की खान है, इतनी आग मिले कि वो हीरे बन सकते हैं, लेकिन इतनी आग कॉस्टली पड़ जाएगी, महंगी पड़ जाएगी कि हीरा उसके भेंट में सस्ता रहेगा। इसलिए इतना मेहनत, इतना पैसा आग का नहीं लगाना चाहते। ऐसा पैसा लगा के हीरा पा लिया तो क्या पाया। और बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे लास्ट में ये एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स जो हैं, उनकी इतनी तेज अग्नि होगी कि वे अग्नि हीरे कोयलों को हीरे में बदलेगी, खाने तुम्हारी भरपूर हो जाएंगी, तुम हीरों को पत्थरों की न्याई वहां से उठा के लाओगे और अपने भवनों में लगा करके अपने भवनों की शोभा बढ़ाओगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन मैं तुम कोयलों को आकर हीरा बना रहा हूं। और कैसे बनाता है, योग की अग्नि देता है और ज्ञान से तराशता है। जब तक योग की प्रकाष्ठा नहीं, योग की अग्नि नहीं मिलती है, तब तक वो जो कालापन है वो हीरे का कोयले वाला पन नहीं जाता है। और जब तक वो नहीं जाता है तब तक तराशा भी जाए, लेकिन तराशने से भी उसकी रंगत या रौनक नहीं निकल पाती। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान और योग दो तुम्हारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इनका बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस ही आपको ब्लिस देगा और ब्लिसफुल लाइफ का आपको अनुभव कराएगा। जैसे हम एक झूले में झूलते हुए अपने जीवन को चला रहे हैं, इतना आपको अतीन्द्रिय सुख का आभास होगा। लेकिन बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, ज्ञान सुनो, ज्ञान का चिंतन करो, लेकिन याद की यात्रा को बढ़ा दो। परंतु हम सुनते अवश्य हैं, सुनकर के उस चीज पर इतना गौर नहीं देते। विचार की बात है, हम अगर बाबा के घर में बच्चे जिन्होंने बाबा को जीवन दे दिया, उनका जीवन ही सेवा है। उनका प्रतिपल देखना, बोलना, सुनना, काम करना, ये सब सेवा ही सेवा है। लेकिन यही सेवा अगर बाबा की याद समझकर, बाबा की सेवा समझकर अगर सेवा करेंगे तो आप समझिए सेवा के साथ योग समाया होगा। और योग के साथ ज्ञान तो समाया ही है, क्योंकि कौन हूं मैं और किसकी सेवा पर हम तत्पर हैं। एक सब्जेक्ट कभी अकेला नहीं रहता, ये आपस में मिला जुला होता है। हम अगर ये समझें कि हमने तो बाबा के घर जीवन दे दिया, क्या सारा जीवन हम यही करेंगे। बाबा कहते क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर कोई सेवा अच्छी नहीं प्रतीत हो रही, नहीं मिल रही है, तो सेवा को क्रिएट करो। क्या नहीं आप कर सकते। कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं। एक जगह रामायण सुना रहे थे तो बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल था। तो कहा कि जब रामचंद्र जी वापिस आ गए अयोध्या से, रावण पर विजय प्राप्त करके, लेकिन हनुमान जी हर समय राम जी के चरणों पर विराजमान रहते थे कि कोई भी राम जी की सेवा मेरे से छूटी न रह जाए। तो भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों तीनों ने आपस में मीटिंग की। देखो किस प्रकार एग्जाम्पल है कि हम भरत अपने भ्राता राम की कुछ भी सेवा नहीं कर पाते, सारी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। तो कहते हैं उन्होंने सेवाओं की लिस्ट बनाई कि हम तीनों भाई क्या क्या सेवाएं करेंगे। और श्री राम जी की सेवा की लिस्ट श्री राम जी को थमा दी और उस लिस्ट में कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम भी छूटा नहीं था जो हनुमान जी कर सके। तो राम जी तो समझ के और मुस्कुरा दिया और कहा ठीक है जो भी करो। लेकिन उन्होंने तीनों लिस्टें हनुमान जी को दिखा दी। हनुमान जी ने देख ली तीनों लिस्ट, जिसमें इतना सा काम भी उनके लिए नहीं छोड़ा, तीनों भाइयों ने काम ले लिया। तो आज की वो रामायण है, मॉडर्न बात भी उन्होंने ऐसी कही। तो हनुमान जी ने कहा राम जी कोई बात नहीं, आपको कभी भी उबासी आ सकती है, तो आज के सिस्टम में उबासी आए तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये चुटकी कौन लगाएगा जब कभी आपको उबासी आएगी तो? और उबासी आती है तो सॉरी कहना होता है, छींक आती है तो छींक आ जाए कहीं तो सॉरी कौन कहेगा। इसलिए मुझे तो 24 घंटे चरणों पर बैठे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी उबासी आ सकती, कभी भी छींक आ सकती। तो राम जी भी समझ गए कि हनुमान जी भी कम नहीं है, अगर ये तीनों भाई कुछ कर सकते हैं तो हनुमान भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने क्रिएट कर ली, ये सेवा मैं करूंगा, बाकी सब सेवाएं तीनों भाई कर ले। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है, हम कभी कोई सेवा, अगर हम ये चाहते हैं मेरे उपयुक्त कोई सेवा नहीं है, बाबा हम बच्चों को कहते हैं सेवा माना ही सेवा। आप ये नहीं कह सकते ये सेवा मेरे अनुकूल है और ये सेवा मेरे अनुकूल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपनी आदरणीय मामा जो जगत माँ सरस्वती का टाइटल बाबा ने दिया और जिन्होंने यज्ञ माता बन पल पल में बच्चों की पालना की, लेकिन बाबा मामा को भी कहते थे मामा ये काम तुम्हें करना है। एक बार मामा को खास बाबा ने कहा कि मामा एक ग्रुप आया हुआ है और बाबा का दिल है कि इस ग्रुप को, आपने शायद सुना पड़ा भी होगा कभी, इस ग्रुप को साबूदाने का हलवा खिलाना है। तो मामा सदा बाबा को कहती थी जी बाबा, और मामा जल्दी से जल्दी किचन में आई और आकर साबूदाने का हलवा बनाने लगी। उस समय जो मोहिनी बहन है, मुन्नी मोहिनी जो रहते हैं, मोहिनी बहन दादी मामा की उस समय ब्राह्मणी कहलाती थी। तो उन्होंने कहा मामा आप हमेशा जी बाबा कह देती हो, आपको मालूम है इस साबूदाने के हलवे में कितना टाइम लगता है? मामा चुप शांत है और हलवा बनाना शुरू किया। तो कहा मोहिनी बहन का अनुभव था उस समय का कि जब मैं देखा कि मम्मा हलवा बना रही है तो मैं भागती बाबा के कमरे में गई और देखा तो ग्रुप तो बाबा से विदाई ले रहा है। मैंने फिर आकर कहा मम्मा ग्रुप विदाई ले रहा है और आप हलवा बनाती जा रही हो, किसके लिए बना रहे हलवा, ग्रुप तो जा रहा है। लेकिन मम्मा ने कुछ नहीं सुना, केवल मात्र प्यारे बाबा की याद में हलवा बनाती जा रही। फिर मम्मा बाबा के कमरे में गई मोहिनी बहन और जाके देखा कि ग्रुप चला गया। आके कहा मम्मा आप और मैं ही हलवा खाएंगे, ग्रुप तो गया, अब ग्रुप नहीं रहा। मम्मा ने इस बात पर भी कुछ नहीं, बाबा ने आज्ञा दी है, मम्मा का काम है इस आज्ञा को पूर्ण करना। बस हलवा बनकर तैयार हो गया, मोहिनी फिर गई बाबा के पास, बाबा आपने मम्मा को कहा था हलवा बनाना, डब्बा तैयार है और पार्टी तो चली गई। बाबा ने कहा हाँ, बाबा ने कहा तो था मामा को, बच्ची जल्दी जल्दी लाओ डिब्बा। डिब्बा तो ले गई, पार्टी तो जा चुकी। बाबा ने एक भाई को भेजा, जाओ बेटा जाकर बच्चे जाकर ये हलवा ग्रुप को देकर आओ। और जब वो बस स्टॉप पर पहुंचा, गाड़ी बस चल चुकी थी। अब बस चल चुकी है, बस के पीछे डिब्बा लिए भागता जा रहा है, हाथ करता ठहर जाओ ठहर जाओ। सोचिए पहाड़ी पर नीचे उतरते हुए कहीं भी बस नहीं ठहर सकती ऐसे जब तक कि ढलान पूरी ना हो जाए। बस चलती जा रही है, वो पीछे भागता जा रहा है, यही कहता हुआ ठहर जाओ ठहर जाओ। और काफी आगे जाकर बस ठहरी और बस का कंडक्टर आता है, कहता है क्या बात है, सोचो तो नहीं क्या हो गया। कहते हैं जी ये ग्रुप को मुझे हलवा देना है। कहते आ रही सारे लोग, कब से तू भागता चला आ रहा है और मेरी बस को भी तुमने देरी कर रहा है और ये हलवा देना है। आप सोचिए उस समय वो जो ग्रुप हलवा लेने के लिए दो भाई बाहर निकले, और वो हलवा होगा या अमृत होगा कि मम्मा ने बनाया और बाबा ने हमको चलती बस को रुका के भी हमको ये हलवा पहुंचाया। मेरा क्या कहने का भाव है कि मम्मा भी स्थूल काम सब करती थी, हमने अपने प्यारे बाबा को भी देखा कैसे बाबा बच्चों के साथ बैठकर कभी साग काट रहे हैं और कभी गेहूं साफ कर रहे हैं। मुझे याद है एक बार कारपेट सूखने पड़ा हुआ था और बाबा उस कारपेट को लपेट रहे थे, बाहर धूप लग रही थी। इतने में बच्चे भागते हुए आए, बाबा हम लपेट लेंगे। बाबा ने कहा बच्चे बादल थे, भीग जाना है कारपेट, तो बाबा लपेट रहे हैं, क्या है। हम कभी कहते हैं ये स्थूल सर्विस, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो होशियार हैं, हम तो कई और सेवाएं कर सकते हैं, ये हम क्यों करें। नहीं, सेवा धारी माना ही सेवा, और सेवा किसकी, सर्वशक्तिवान की सेवा, इंसान की सेवा नहीं। मैं आपको जगदीश भाई जी का उदाहरण सुनाती हूँ। इतने व्यस्त रहते थे, सुबह 2:30 बजे लगभग उठ जाते, 2:30 बजे, और उठते ही थोड़ा योग किया और लिखना शुरू होते थे, क्योंकि मॉर्निंग में प्रथम प्रेस में मेरा मैटर जाएगा तो सबसे पहले छपाई इसकी शुरू होगी, लेट जाएगा तो लेट शुरू होगा, इसलिए सुबह सुबह शुरू करते। रात को कई बार उनके पास उस छप करके रफ उनके पास आता ताकि उसको फेर किया जाए और फिर वो छपने जाए, तो प्रूफ रात को 12-12 बजे तक बैठकर पढ़ते और फिर उस प्रूफ को भेज ठीक करके सुबह भेज देते। लेकिन फिर भी हमको कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक किचन ऊपर भी बन जाए, क्योंकि वो सदा ऊपर के फ्लैट में रहते थे कमरे में। मैं कहा ऊपर क्यों बने, कहा आप बहने रोज भोजन बनाते हो और मैं तो बनाता ही नहीं। तो हमने कहा आप और काम अपना करते हो, कहा नहीं, वो काम अपनी जगह, ये काम अपनी जगह। खास एक छोटा सा किचन बनाया और कभी कभी हम बहनों को निमंत्रण होता था कि आज ऊपर भोजन तैयार है, वहीं भोजन सबको करना। एक भाई छोटा सा था, उसको ले लेते थे साथ और बैठ के भोजन बना रहे होते थे। हम कहते थे आपको और कोई काम नहीं है, भोजन भी बहने नहीं बना सकती। कहते थे नहीं, बाबा का यज्ञ में हर काम में हाथ डलना चाहिए, ये ईश्वर का कर्तव्य है। अरे भगवान स्वर्ग बनाने आया है, देव बनाने आया हुआ। और हम भोजन करने के बाद बर्तन साफ करने लगते थे, कहते नहीं देवियों ने आज यहाँ भोजन किया, बर्तन रख जाओ, बर्तन मैं साफ करूंगा। और वो बर्तन छोटा सा भाई वो मांजता चला जाता, भाई सब धोते चले जाते। हमको बुरा लगता था लेकिन मानते नहीं थे, कहते थे नहीं ये भी तो सेवा है। आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा भी करते होंगे, नहीं सेवा है। और किसी से भी वो इसी प्रकार ही सेवा चाहते। कई बार मैं कह देती थी भाई साहब इतनी सेवा आप लेते हो भाइयों से, कहते बस मैं आपके भाइयों से ही सेवा लेता हूँ, मैं भी तो थोड़ा करता हूँ। मैंने कहा थोड़ा तो करते हो, पूरा ही करते हो, लेकिन बहुत लेते। नहीं सेवा है, हमारे प्राण है। अब सोचिए शक्ति बनती है, और अगर वासना भोग के जीवन में शक्ति नहीं जाएगी तो ये शक्ति ईश्वर की सेवा में जानी जरूरी होती। अगर ईश्वर की सेवा में भी शक्ति नहीं जाएगी तो ये शक्ति दिमाग पर चढ़कर अभिमान लाएगी, व्यर्थ के सोच चलाएगी, चिंतन चलाएगी, तेरे मेरे की बातों में आएगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को खास कहता है, बच्चे मैं तो तुम्हें कोयले से हीरा बनाने आया। अगर तू याद कर, कोयले को ही तो हीरा बनाया जाता है, उसको तो तराश तराश कर चमक दी जाती है। तू याद कर, अगर तू कोयला है तो तेरे संबंध कोयले से ही तो थे, और जब तू हीरा बना तब तेरे नाते हीरे के साथ जुड़े। तो अगर स्वयं को देह समझता है तो इसका मतलब है बार बार अपने पुराने कोयलेपन को तो याद करता है। जब तू देह समझता है तो देह के संबंध, देह की दुनिया और देह के धंधे और देह की बातें तुझे याद आती। ख्याल रख, तेरा जीवन आराम का जीवन नहीं है, आराम का जीवन देवताओं का है। तेरा जीवन मेहनत का है और त्याग का जीवन। त्याग ही तप को लाता है और तप से ही इंद्रियां काबू में आती। अगर मैंने जीवन में ये समझा कि ब्राह्मण बनना मानो आराम का जीवन जीना है, तो ये आराम जीवन का संस्कार ब्राह्मण का नहीं है, ये देवताओं का संस्कार। ब्राह्मणों का संस्कार तो मेहनत करना है। जिस दाता के घर में अपने जी जान से कमाकर कना कना भी ईश्वर के यज्ञ में सफर करते हैं, और जिनको बाबा कहते हैं एक का कने का घना करके मुझे उन्हें देना होता है, हम उस घने की पालना में पलते हैं, और उस घने की पालना पे पलने वाले बच्चों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर हम बाबा के बच्चे बाबा के घर की शोभा नहीं बनते तो बाबा के घर की शोभा कौन बनेगा। आज कई बार दादी जानकी जी अपना अनुभव सुनाते हैं और कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। दादी कभी कभी सुना देते हैं कि देखो, मैं कहीं भी चलती हूँ तो मैं तो कभी छाता नहीं उठाती, तुम लोग तो छाते उठाकर चल पड़ते हो। कभी दादी जी कह देते हैं, मैं देखो अपने हाथ में कभी पर्स नहीं लेती, तुम लोग इतने बड़े बड़े पर्स लेकर चल पड़ते हो। मेरे पास अपनी कोई कार नहीं, तुम्हारी तो अपनी अपनी कारें हैं। कई अंदर ही अंदर नहीं बाहर भी बोल देते हैं, दादी जी कहती हैं। उनके साथ उनकी ब्राह्मणी पर्स उठा के चलती है, दादी जी को चलने की क्या जरूरत है। और दादी कहती मैं पर्स नहीं उठाती, उनकी ब्राह्मणी तो उठाती है। दादी जी कहती मैं छाता नहीं उठाती, लेकिन जो साथ जाने वाला भाई है वो तो छाता उठा के जा रहा है। दादी जी की कार नहीं है, दादी जी को 10 कारें आ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, कहाँ दादी जी चलेंगे। 10 कारें दादी के लिए, एक कार दादी को लेकर क्या करना है। हम ये तो सोच लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि दादी के त्याग और तप ने आज इस स्थिति को लाया कि दादी को पर्स भी पकड़ने की जरूरत नहीं, पर्स पकड़ के दूसरा चलने में भी अपना स्वाभिमान समझता है। वाह रे, मैं दादी का पर्स पकड़ के मैं चल रहा हूं। बने तो सही हम ऐसे, हम ये चाहेंगे हमारा भी कोई पर्स पकड़ के चले, लेकिन पर्स पकड़वाने से पहले पर्स पकड़वाने वाला भी तो बनना पड़ेगा। दादी ने छाता नहीं पकड़ा, लेकिन वर्षा आ जाए 10 छाता लेके भागते हैं, दादी कहीं भीग ना जाए। दादी को क्या जरूरत है छाता पकड़ने की। लेकिन दादी ने अनेकों को ऐसा जीए दान दिया, इतना तप और त्याग किया, जो अनेक आत्माएं आज दादी को एक बूंद भी ना पड़ जाए उसके लिए भी सचेत है कि वर्षा आई तो छाता लेकर हम भागेंगे। दादी को गाड़ी की क्या जरूरत है, मेरी गाड़ी में दादी बैठ गई, मेरी गाड़ी तो शुद्ध पवित्र बन गई। अरे दादी जी आज मेरी गाड़ी में बैठी, ऐसे महान कर्तव्य किए, ऐसा त्याग और तप किया उन्होंने, ऐसा स्नेह और ऐसा सहयोग दिया उन्होंने सबको, जिनको ये कार्य करने की जरूरत नहीं पड़े। आज हम अपने से पूछें, कई बार कई कह देते हैं क्या सारा जीवन झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ ये करो सब यही करते रहेंगे क्या? हम भी तो पुराने हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप पुराने हो गए, आपने कितनों को आप समान बनाया। जो आपका झाड़ू पोछा लेकर आपके आगे पीछे झाड़ू पोछा लगाने ले भाग रहे हैं, भ्राता जी बहन बैठिए आराम कीजिए, ये झाड़ू पोछा हम बैठे हैं। आप कहां जा रहे हो माइक को बुलाने वाले को और टेंट लगवाने वाले को, हम किस लिए हैं? हमें बताइए क्या सेवा है? आप क्यों निमंत्रण कार्ड लेके बांटने चले, हमको बताइए, हम सब कार्ड बांट के आते हैं। हमने कितनों को आप समान बनाया है, कितनों को हमारे जीवन से ये प्रेरणाएं मिली हैं। ये जो हम मैं और मेरा है, वास्तव में मैं और मेरा, मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा है, इतना शब्द ही मैं और मेरे में नहीं आता है। मैं कौन हूं और किसका हूं, ये नशा और ये स्थिति अनेकों को इस नशे और इस स्थिति में ले आए। बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे तुम्हें बनना नहीं, तुझे बनाना भी है। मैंने सेवा में अर्पण जीवन किया, लेकिन कितनों को प्रेरणा मिलती है कि सचमुच जीवन है तो ये है। जीवन बना तो ऐसा बना, जीवन बनाओ तो ऐसा बनाओ। कितनों को मेरा जीवन प्रेरित करता है। मैं बाबा का एक एग्जाम्पल बच्चा, घर परिवार में रहने वाले सुबह 4 बजे उठकर योग कर रहे हैं, और ब्राह्मण बाबा के समर्पित बच्चे कहते हैं रात को दीदी देर से सोए थे, सुबह उठ नहीं पाएंगे, आराम से सो रहे कराटे लगा के। अरे प्यारे बाबा का घर, ईश्वर की पालना में पलने वाले, एक का कने का घना करके उसको देना है दूसरे को, और उस घने से हम खाते हैं, हम ईश्वर की अवज्ञा कर जाते हैं। और फिर हम कहते हैं पता नहीं जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी है नहीं। बाबा तो कहते हैं तुम्हें अतींद्रिय सुख होना चाहिए, पता नहीं किनको अतींद्रिय सुख है। सचमुच हम घर परिवार में रहने वालों को भी कईयों को देखते हैं जिसको बाबा कहते हैं, वो भी एक प्रकार के यज्ञ के समर्पित बच्चे, क्योंकि ट्रस्टी। और जो बाबा के यज्ञ में आ चुके हैं, मुझे आता है उनके ऊपर कितना बड़ा ताज है, क्योंकि बाबा ने बहुत बड़ी बात कह रखी हुई है, जो बाबा के घर के बच्चे हैं नई दुनिया में वो अंदर रहने वाले बच्चे होंगे, बाहर वाले बच्चे अंदर नहीं आएंगे, चाहे वो राजा बने या नौकर बने या उनके जलाने वाले बने, वो भी अंदर वाले अंदर वालों का बनेंगे, बाहर वाले नहीं बनेंगे। इतनी बड़ी आश्वासन, इतनी बड़ी गारंटी बाबा ने दी है। हम बाबा के वो लाल हैं जिन्होंने बाबा को जीवन दिया, और बाबा ने हमको सदा के लिए गारंटी दी कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। जिस राज्य में प्रथम राजा बनेगा, उस राज्य के साथ साथ तेरा अंदर ही अंदर सारा डिपार्टमेंट चलेगा, तुम साधारण बच्चे नहीं हो। इसलिए कभी हम अपने को साधारण न समझे, हम बाबा के विशेष रतन। कौन कहते हैं हम साधारण हैं? बाबा कभी कहते हैं तुम मेरे सिर के ताज हो, हृदय की मणि हो, नैनों के नूर हो। अरे बच्चे तुम पर तो बाबा को नाज है, तुम मेरे शो केस के शो पीसीज हो। हम सुन लेते हैं ऐसे जैसे पता नहीं किसी और को कहा जा रहा है। मुझे सर्वशक्तिवान प्यारा बाबा कह रहा है, इतने ऊंचे टाइटल से मुझे सुशोभित कर रहा है। मैं रूस देश में देखती हूँ, युद्ध जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ फर्स्ट, तो जो वार के समय जिन्होंने शूरवीरताएं दिखाई उनको इतने मेडल्स मिले हैं, तो वो रिटायर हो गए, रिटायर हो जाने के बाद भी वो सब मेडल लगाए हुए जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो मेडल लगे हुए उनको देखो, इतने नशे और खुशी में। लेकिन हम जैसे मेडल किसको मिलेंगे? इतने मेडलों से इतने सुशोभित बाबा के हम बच्चे, लेकिन हमको अपने भाग्य का नशा कितना है। तो बाबा अब हमसे क्या चाहते हैं कि महायज्ञ में आए हो। इस महायज्ञ में जो भी संकल्प दृढ़ करेंगे, अनेकों के लगन की अगन का ये यज्ञ है, उसमें तुम्हारी जो भी कमजोरी कमी है वो सब जलकर भस्म हो जाएगी। बच्चे संपूर्ण आहुति डाल देना, अपूर्ण आहुति न डालना। संपूर्ण का मतलब ये है कि मन में संशय न लाना कि पता नहीं क्या होगा। तो संकल्प दृढ़ कर, तेरी दृढ़ता का संकल्प संपन्न होकर ही रहेगा। क्योंकि आप सब भी यहाँ आए हो, और मैं समझती हूँ जब हम बाबा के घर आते हैं और विशेष इस प्रकार के कार्यक्रमों में भी, तो हम बहुत कुछ अपने से आशा रखते हैं और बहुत सी आशाएं हमसे, जिनके संपर्क और संग में हम रहते हैं, उनकी हमसे होती। हम अपनी भी आशाओं को पूर्ण करें और जिनके संग और संपर्क में हैं उनकी आशाएं भी पूरी करके दिखाएं। बहुत कभी कभी अफसोस होता है, ये चीज नहीं मिली, ये चीज कम मिली, इसलिए अवस्था खराब हो गई। अरे हम चीजों को खाने, चीजों को लेने नहीं आए थे। हम नाम मान शान को लेने नहीं आए थे। हम तो अपने अंग अंग को सेवा में लगाकर अपने जीवन को धन्य और सफल करने के लिए आए। बाबा ने बहुत अच्छा एक महावाक्यों में कहा कि बच्चे ज्ञान सुनते हैं, लेकिन एक एक अंग में वो ज्ञान समा जाए और एक एक अंग शुद्ध हो जाए, जब तक ये नहीं हुआ तब तक ज्ञान केवल मात्र ज्ञान के रूप में रहेगा, ज्ञान शक्ति के रूप में नहीं बदला। आपके नेत्रों से, आपके मुख से, आपके संकल्पों से, आपके प्रत्येक अंग से प्यारे बाबा की उस सेवा का भाव प्रकट होता रहे। यही तो बाबा हमसे चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। हम अपने आप से हमेशा देखें, सचमुच प्यारे बाबा ने हमको चुना है। कभी अपने से निराश भी ना हो जाए कि पता नहीं मेरे में कोई विशेषता नहीं, कोई खूबी नहीं, भगवान ने मेरी कोई विशेषता को देखा है, कोई खास खूबी को देखा है, तब तो उसने सारे विश्व में से मुझे सिलेक्ट करके अपने घर रखने का परमिशन दी है। मैं बाबा का कोई विशेष रत्न हूँ, लेकिन उस विशेषता को मैं नहीं जानता। मेरे में जो विशेषताएं हैं उसको सेवा में लाता चला जाए, मेरी हड्डी हड्डी सेवाओं में लग जाए। कहानियां हमारे पास बनी हैं, हम कई बार रामायण की गाथा सुना देती हैं कि कैसे वो स्क्विरल, जिसको गलहरी कहते हैं, कैसे वो गलहरी का गायन आता है रामायण में कि वानरों को जाकर कहा कि तुम राम जी की सेवा में इतने पुल का निर्माण कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, मुझे भी तो कोई सेवा दे दो। वानरों ने यही कहा, गलहरी हट यहाँ से, तू क्या करेगी, हमारे पांव में आके कुचल जाएगी, तेरे कोई हाथ है जो तसला उठा के काम करेगी। लेकिन गलहरी गलहरी थी छोटी सी, लेकिन राम जी के पुल का निर्माण और मैं कुछ ना करूं, कितनी सुंदर गाथा है वो। तो वो देखकर क्या कर रहे हैं वानर, ये कहानी रूप बनी हुई है। वो गई रेती के ढेर पर, वहां जाके हिली डुली और रेती अपने बालों में बिठा ली। बाल उसके बड़े बड़े होते हैं, और धीरे धीरे चल करके पुल पर पहुंच गई और वहां जाके कूदने लग गई ताकि वो बालों में पड़ी रेती इस पुल पर पड़ जाए। फिर सेकंड टाइम आती है, फिर आकर के वहां पर जो भी रेती के साथ सीमेंट है, अब सीमेंट में लोटपोट होती है, और फिर जाती है धीरे धीरे, और फिर पुल पर जाके छिड़क कर फिर आती है। गायन है कि राम जी ने देखा ये छोटी सी गलहरी आती है जाती है, करती क्या है। आखिर देखा तो ये पता चला कि ये तो सीमेंट और बदरपुर और रेती लाकर पुल पर डाल रही है, हाथ नहीं तसला नहीं पकड़ सकती, बालों में तो बैठ सकता है ना। तब कहते हैं, गायन सुनाते, कहानियां सुनाते हैं, राम जी ने उसे इतना प्यार दिया, तो ये जो गलहरी के ऊपर लकीरें हैं ये राम जी की उंगलियां हैं जो उन्होंने प्यार उसको किया। मैं कई बार कहती हूँ कहानी कहानी है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि सचमुच हम ईश्वर के यज्ञ में कुछ भी कर लें। दाता कोई ना मुझे देखे, कोई नहीं सर्टिफिकेट देगा, लेकिन मेरे दाता जिसने मुझे अपनाया है, जिसने मुझे सारे विश्व से सिलेक्ट किया है, वो देख रहा है मेरा बच्चा या मेरी बच्ची क्या कर रहे हैं, और मैं दिखाने के लिए नहीं कुछ कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं अपने भाग्य को चमकाने के लिए, भगवान का बन, भाग्यवान बन, भाग्य को सराहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, स्वयं ही भाग्य की सराहना। अब हम अपने से पूछें, मेरे में मैंपन, मैं क्या, मैं क्या था, मैं आज हम कभी देखते हैं हमको सब प्यार से या अपनेपन या स्नेह से, या कभी कोई कार्यक्रम होता है तो जो यज्ञ में रहने वाले भाई या बहने हैं, कोई कहता है जी ये कपड़ा है ये हमारा, उनका ये भाइयों के लिए चीज है, ये साड़ियां ये बहनों के लिए, भाई हमको विशेष समझकर सब कर रहे हैं, किस निगाह से आज हमको सब देखते हैं, ये सारी निगाहें बदली कैसे, भगवान ने हमको अपना बनाकर, इससे बढ़कर मैं अपना कौन सा भाग्य समझूं, किस चीज को हम मैं वो हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, या मैं बहुत बड़े घर का हूं, या मैं बहुत समझदार हूं, बहुत प्लानिंग बुद्धि हूं, तो बड़ी अच्छी बात है, आप हैं उसका अभिमान क्यों। ये सब योग्यताएं देने वाला वो दाता कौन जिसने मुझे सब योग्यताएं प्रदान की और इतना बड़ा स्कोप दिया, इतने सेवा स्थान हैं जहां मैं अपनी सेवाओं को देकर अपने भाग्य को चमका सकती हूं। इसलिए अगर मैं देह समझूंगी मैं, तो किस घर का बच्चा हूं और किस मलकियत का मालिक हूं, और भगवान कहते हैं ये तेरा मैं अपन खत्म नहीं हो सकता, केवल इसको चेंज करना है। मैं देह समझता था, अब मैं कौन, शुद्ध शांत पवित्र प्रेम संपन्न आत्मा हूं, ये हूं मैं। अभिमान आ जाए ना इसका, कोई कहे ये बात हो गई, शांत स्वरूप आत्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आनंद स्वरूप आत्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कई चीजें ऐसी आएंगी जो हमें हमारे स्वरूप से विचलित करने वाली होंगी, लेकिन मेरा स्वरूप कायर कमजोर स्वरूप नहीं है, स्वयं सर्वशक्तिवान ने मेरे वास्तविक स्वरूप की मुझे पहचान दी है, मैं वो आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। ऐसा ना हो जाए कि मुझे कुछ कमी बताने वाला बताने से संकोच करे, किसे कुछ कह दिया तो पता नहीं इसका रिएक्ट कैसा होगा, रिएक्शन क्या होगा, मेरे से बोलेगा कैसे, इसलिए कहते समझते हुए भी कह ना पाए। अगर मान लीजिए हम बाबा के घर रहते हैं, अगर हमारी कोई कमी और कमजोरी है, जो भी हमारे निमित्त हैं, अगर वो फ्री होके हमसे कोई बात कह सकते हैं और हम स्वीकार कर ले, है तो स्वीकार करें, नहीं है तो इन एडवांस के लिए अच्छी चीज को बना के अपने पास रख ले। हमने अपनी प्यारी मम्मा का एग्जाम्पल देखा, कोई बात होती थी बाबा मम्मा को कह देता था, बड़ी दीदी को कह देता था, और फिर कहता था कहता हूँ बेटी को सुनाता हूँ बहू को, बहुत सी मेरी बच्चियां बहू जैसी हैं और बहुत सी मेरे बच्चे बेटी जैसी, इसलिए मम्मा को कुछ कहता था बाबा कि किसी बच्चे की कमी होती थी तो बाबा मम्मा को कहता था, मम्मा ये तेरा शक्ति दल, ये सब तेरी कमजोरी है। बाबा जो कुछ होता था मम्मा को ढक कह देता था, बच्चों के अंदर कुछ कुछ होता था, बाबा ने हमारी कमी को मम्मा हमें क्यों नहीं कहा, आपको क्यों बाबा ने कहा, तो मम्मा कहती थी आपको कुछ जेलसी होती है मेरे से, मुझे बाबा इतने अनमोल रतन दे रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता है ये, कभी मम्मा ने ये नहीं कहा मुझे क्यों कहा गया है। हम कई बार अपनी प्रोग्रेस को रोक लेते हैं क्योंकि किसी के मन में मेरे लिए कोई बात आती है, लेकिन समझते अगर कह दिया तो इससे भी आत्मा चली जाएगी, इसलिए चलो चलने दो ना ही कहो तो अच्छा है। इसका मतलब मेरी प्रोग्रेस को लॉक लग गया, ताला लग गया। और किसी भी प्राणी का परिवर्तन कभी निजी पुरुषार्थ से नहीं होता है, उसको पुरुषार्थ में सहयोग की जरूरत होती है। बिना सहयोग के पुरुषार्थ नहीं चलता है। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी हमको ये करना है, अरे परम सौभाग्य है कि तबीयत ना ठीक होने पर भी बाबा ने मुझे ये सेवा अलॉट कर दी। बाबा तो मेरे पर बड़ा ही दयालु और बड़ा कृपालु है। सेवा ही तो इस समय का वो अमृत है जिससे मैं अमर पद प्राप्त करने के लिए तेरे घर आ गया। वो जो मैं हूं, मैं ये मैं वो, गया और खत्म हुआ। मेरा कौन, मेरा सर्वशक्तिवान मैं कौन, मैं वो कल पहले वाली जिसको आज ही बाबा ने कहा, वो पूजनीय आत्मा, वो सारे विश्व की वो आत्मा जो आधार मूर्त उधार मूर्त है, तो वो आत्मा है। कभी अपने को साधारण ना समझो। तो ऐसी महान विभूति अगर हम सदा स्वमान में स्वरूप में रहें, तो फिर ये देह का अभिमान, मैं मेरा, ये सब चीजें हैं क्या? अब तो बाबा कहते हैं क्या होना चाहिए, मैं ना रहा, तू ना रहा, दोनों मिलकर बाबा हम तो बस एक हो गए। जैसा तू है अब मुझे तो वैसा ही बनकर रहना है, तभी तो मेरा बाबा रिवील होगा, प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो बाप को कौन प्रत्यक्ष करे। किसी ने एक बार पूछा था, बाबा बहुत समय से कहते हो बाप की प्रत्यक्षता होगी, बाबा अभी तक तो कोई प्रत्यक्षता इतनी हो नहीं रही। बाबा ने कहा यही तो मेरा प्रश्न बच्चों आपसे है, आप बच्चों ने बाप को छिपाया हुआ है। बाप पूछता है कब तक बाप को प्रत्यक्ष करोगे, और बाप को प्रत्यक्ष करना माना सन शोज फादर। हम वो बाबा के बच्चे हैं जिनके द्वारा ही तो बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले रतन, मैं फर्स्ट टाइम ही आप सबकी सभा में आई हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे बाबा ने मौका दिया कि मैं आप सबके दर्शन कर सकूं, कि सचमुच ऐसी महान विभूतियां जो इतने समय से यज्ञ में रहते हुए अपना सर्वस्व प्यारे बाबा की सेवा में लगाकर चल रहे हैं, आपसे बढ़कर दुनिया सारी में कौन महान आत्मा हो सकता। ओम शांति।